आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य। ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से। यानी कि ये है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे। कर्मयोगी कोरोना योद्धा प्रोग्राम सुनने वाले सभी साथियों को किरण आचार्य का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यदि हम एक विश्व को सागर की तरह देखें तो ऐसा लगता है कि COVID-19 में समुद्री तूफान अचानक उठा और इसकी पहली लहर क्या सितम ढाएगी, उससे हम कैसे बचेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं था। परंतु ऐसे में भी किसी समुद्र तट पर एक प्रकाश स्तंभ की तरह प्रचार प्रसार के संसाधन खड़े थे जो हमें सूचनाओं और समाचारों से अवगत कराते रहे, चाहे वो निजी टीवी चैनल हो या FM रेडियो हो या आकाशवाणी या दूरदर्शन। ये एक आशा की किरण की भूमिका निभाते रहे। साथियों, टीवी और रेडियो की आवाज़ होते हैं एंकर, न्यूज़ रीडर, प्रोग्राम प्रेजेंटर और अनाउंसर। तो आशा की किरण का ये मानना है कि महामारी काल में भी इन्होंने अपने काम पर डटे रहकर कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। तो आज कर्मयोगी कोरोना योद्धा के प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है बेहद उम्दा आवाज़ के धनी और बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले एक लोकप्रिय उद्घोषक श्री गोपाल लखन को। आप वर्तमान में आकाशवाणी जयपुर में सीनियर रेडियो अनाउंसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए गोपाल जी का स्वागत करते हैं। गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्ते।
नमस्कार किरण जी, आपका और आपके तमाम सुनने वालों का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और मैं अपनी बात कहूँगा कुछ उम्मीद भरी बातों के साथ।
जी हाँ, बिल्कुल गोपाल जी, हम तैयार हैं इस उम्मीद भरे सफर पर चलने के लिए। आप और हम सभी जानते हैं कि रेडियो की आवाज़ जो होते हैं वो होते हैं प्रोग्राम प्रेजेंटर्स, अनाउंसर्स, न्यूज़ रीडर्स, और इनकी जो छवि है वो किसी भी लिसनर या श्रोता के मन में बड़ी अलग से होती है। कि टीवी प्रेजेंटर्स को तो हम देख पाते हैं लेकिन इनको हम देख नहीं पाते। इसी तरह से जब हम अमीन सयानी और तबस्सुम को सुनते थे तो हम कल्पना करते थे कि उनकी छवि कैसी होगी, वो कैसे दिखते होंगे। यानी कि एक अनाउंसर की छवि जो है वो लिसनर के मन में काल्पनिक छवि होती है। तो आपको कब लगा कि आपको ऐसी खास छवि वाला अनाउंसर बनना है और इस अनाउंसर बनने के पीछे आपकी सपोर्टिव एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज आपने कहाँ से किया और अभी तक के करियर पर एक नज़र हम डालना चाहेंगे। हमारे श्रोता भी इस बारे में ज़रूर सुनना चाहेंगे।
किरण जी, दरअसल क्या है, हर एक व्यक्ति जो कॉलेज में स्टूडेंट होता है वो कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही बहुत सारे सपने अपने मन में संजोता है और उसमें एक सपना होता है एक अच्छे करियर का, एक अच्छी नौकरी का। मैंने कॉलेज तो कभी देखा नहीं लेकिन मैं स्वयं पाठी छात्र के तौर पर मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन को पूरा किया। हमने पढ़ाई पर बहुत जोर दिया और मेरे पिताजी चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करें, जैसा कि हर एक माता पिता चाहते हैं। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ पूरी करने के बाद अगर कभी नौकरी करने का मौका मिलेगा तो मैं बैंक में नौकरी करूंगा, क्योंकि उस समय बहुत अच्छी तनख्वाहें होती थी बैंकों में। रेडियो में मेरा आना बिल्कुल अनायास हुआ। जैसे कि हम सब देखते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी है और कहाँ पे हम फॉर्म भर सकते हैं, यही रूटीन लाइफ में था। जब हमने कॉलेज एजुकेशन पूरी की तो यूं ही अखबार में हमने विज्ञापन देखा तो एक रेडियो अनाउंसर की वैकेंसी हमने देखी थी आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के लिए, और हमने उसमें अप्लाई किया और हमने उसमें जो परीक्षाएं थी उसकी वो सारी की सारी पास कर ली। और जब पास हो गए तो हमको रेडियो अनाउंसर बनने का मौका मिला। हालांकि मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं रेडियो अनाउंसर बनूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भाग्य में आपके लिखा होता है। मेरे पापा जो है रेडियो के बड़े शौकीन थे, रेडियो सुनने के, और जब मेरा जन्म हुआ था 1965 में, तब एक पुराना चलन था, अब आज तो शायद बहुत कम हो गया, कि जब घर में कोई नया शिशु आता है तो ये हम कोई गिफ्ट लेकर आते हैं यादगार के तौर पे। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी एक रेडियो लेकर आए थे और फिर जब मैं बड़ा हुआ धीरे धीरे तो उनके साथ बैठ के रेडियो सुना करते थे हम। तो यूँ एक चस्का सा लग गया था कि रेडियो से इतनी अच्छी चीज़ें, अच्छे गाने आती हैं और बहुत सारी यादें मेरे पिताजी के साथ रेडियो की मेरी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से जब हमने एग्ज़ाम पास कर लिया 1994 में और उसके बाद में हमको ज्वाइनिंग मिली, तो पहली बार जब रेडियो पे बोलने का मौका मिला तो मन बड़ा घबराया हुआ था कि कैसे बोलेंगे। श्रोता होने का बहुत बड़ा फ़ायदा मिला मुझे कि जब मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की तो मेरे थोड़ी कॉन्फिडेंस जो डेवलप था या मैं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा इसको, तो रेडियो लिस्नर होने से मुझे काफ़ी इसका सपोर्ट मिला और मैं अपनी नौकरी को बड़े अच्छे से शुरू कर पाया। और 1994 से अब तक लगभग 25-26 साल का समय बीत गया है, हम बहुत अच्छे तरीके से रेडियो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
आशा की किरण में आप सुन रहे हैं कर्मयोगी कोरोना योद्धा। तो गोपाल जी, कुछ हमारी डेस्टिनी होती है, आपके जन्म के अवसर पर आपके पिताजी का रेडियो लाना और उनके साथ आपका रेडियो सुनना और आपका रेडियो से जुड़ जाना। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जीवन में घटनी होती हैं तो उसकी जो नींव है बहुत पहले रखी जा सकती है। तो अच्छी बात है आप रेडियो से जुड़े, हम भी आपके अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। आपने बताया कि आपका 24-25 साल का अनुभव इस क्षेत्र में हो गया है, बहुत लंबा अनुभव है। इस प्रसारण काल में मुझे नहीं लगता कि आपने COVID-19 जैसी कोई परिस्थिति कभी देखी होगी, ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है। ऐसे में रेडियो की भूमिका कोरोना के काल में आप कैसे देख, साथ ही हम सभी जानते हैं कि एक प्रसारण के पीछे कई लोग जुड़े होते हैं, उनकी मेहनत होती है, लेकिन रेडियो पर उद्घोषणाओं में पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव टोन रख करके उद्घोषणाएं करना तो एक अनाउंसर की ही जिम्मेदारी होती है। हमारी तरह वो भी, यानी कि अनाउंसर भी एक इंसान होता है, आसपास के माहौल से प्रभावित होता है, लेकिन जब रेडियो को हम प्ले ऑन करते हैं तो एक उद्घोषक की आशा और उम्मीद से परिपूर्ण सकारात्मक आवाज ही हमने सुनी, ऐसे कोरोना काल में भी। तो चिंताजनक नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने आप को, पॉजिटिव ओरा को कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे बनाए रखते हैं, और ये मुश्किल है या बहुत आसान है?
किरण जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए एक टीम होती है। आप चाहे अपने घर में कोई काम करें, चाहे वो हाउस वर्क हो हमारा, चाहे वो किसी दफ्तर का काम हो,
जी
इसी तरह रेडियो भी एक टीम वर्क के तौर पे जब प्रोग्राम ऑन एयर आता है तो उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। और जहाँ तक पॉजिटिविटी की बात है तो रेडियो हमेशा से सकारात्मक रहा है, क्योंकि हमारा पहला मोटो है रेडियो का, इन्फॉर्म करना, सूचनाएं देना। और रेडियो जैसी प्रतिष्ठित संस्था गलत सूचना नहीं दे सकती,
जी
तो हम सही सूचना दें और वो सूचना सही रूप में पहुंचे, ये हमारा पहला दायित्व है।
जी
दूसरे, अगर हम बात करें तो सूचनाएं संप्रेषित करने के साथ साथ हमारा ये दायित्व भी है रेडियो का, स्पेशली कि हम एजुकेट करें लोगों को, शिक्षित बनाएं लोगों को, प्रेरित करें और
जी
अच्छे भविष्य की तरफ ले जाने वाले काम करें। और चूंकि ये दोनों ही काम क्या है, ऐसे सूखे सूखे से लगते हैं, ड्राई जैसे, इसलिए इनको रसीला बनाने के लिए, इनको मीठा बनाने के लिए एंटरटेनमेंट भी रखा गया है कि आप मनोरंजन करते हुए इन सारी बातों को सीखें और सुनें। तो रेडियो अपने इन तीनों ही उद्देश्यों में बहुत सफल रहा है। जहाँ तक कोरोना की बात है, ये जो संक्रमण का काल है, ये वास्तव में बहुत डराने वाला था। अब तक का जो माहौल है उसमें हम देखते हैं कि हमने लॉकडाउन 4 और 5 भी देखे, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक होने का समय है। और मीडिया ने, रेडियो और दूरदर्शन सहित मीडिया के तमाम जितने भी प्रारूप हैं हमारे सामने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे प्राइवेट चैनल हो, चाहे दूरदर्शन और रेडियो हो, सब ने अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे रूप में निभाया है। आप ये देखेंगे कि हमारे पास में कोरोना से संबंधित जितनी भी जानकारियां आई है वो सारी की सारी मीडिया के माध्यम से आई है, चाहे हमने अखबार पढ़ा हो या कोई टीवी चैनल देखा हो। और उन सब ने हमें ये बताया है कि कोरोना एक महामारी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक वैश्विक महामारी के तौर पर घोषित किया है, और इसके तौर तरीके क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे हम कैसे बचे रह सकते हैं, ये सारा का सारा काम मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से आम जनता तक किया है और पहुंचाया है इन सारी सूचनाओं को। अब जो सकारात्मकता की बात है, तो कहीं कहीं बीच में लगा होगा आम जनता को कि बहुत अति हो गई, और जिस तरह से एक ओवरडोज हमें थोड़ा सा बीमार कर देती है ठीक करने के बजाय, उसी तरह मीडिया भी कुछ अतिरेक सूचनाओं का संप्रेषण कर पाया होगा और लगा होगा कि हम बोर हो रहे हैं, बहुत हो गया कोरोना, कोरोना कोरोना से हम बहुत डर गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये व्यक्ति के नज़रिए पर निर्भर है कि आप सूचनाओं को किस तरीके से लेते हैं। सूचनाएं हमारी जानकारी के लिए होती है, और अपडेट रहें सूचनाओं से, और जो सरकार कहना चाहती है उन नियमों का, उनका पालन करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को सहज बनाएं। हमारा पहला दायित्व भी यही है, जब मीडिया और सरकार अपना दायित्व निभा रही है तो एक नागरिक के तौर पे, और मैं कहूँगा यहाँ पे एक देशभक्त नागरिक के तौर पे, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे सरकार ने कहा कि लॉकडाउन है तो आपको बाहर नहीं निकलना है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती थी, आम जनता की ड्यूटी बनती थी कि हम अनावश्यक बाहर नहीं निकले। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से रूबरू करवाने में सरकार के साथ साथ मीडिया ने, रेडियो ने, दूरदर्शन ने बहुत अच्छा काम किया है।
मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, भूले बिसरे की गाके भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
तो सकारात्मकता की बात अभी हुई गोपाल जी की, हमको सकारात्मक रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज सुनकर के सारे श्रोता आपकी आवाज के साथ साथ चलेंगे, और
जी जी
ये बहुत जरूरी है कि अनाउंसर हमेशा अगर नकारात्मक बात भी हो तो उसको इस तरह से कहे कि उसका प्रभाव, जानकारी भी पहुंच जाए, प्रभाव भी ना पड़े और संदेश भी सीधा पहुंच जाए। आप जब प्रसारण के समय जो कंटेंट लेते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, सॉन्ग का सिलेक्शन करते हैं, वो आप इसमें माहिर हैं, लेकिन क्या आपने कोविड काल में कुछ खास बातों का ख्याल रखा?
इसके दो तरह के जवाब हो सकते हैं। एक तो कि खुद के स्तर पे क्या हमने ख्याल रखा, तो हाँ हमने अपने हाथों को सैनिटाइज किया, दफ्तर में आए तो मास्क पहन कर आए, और जितने भी सुरक्षात्मक उपाय थे अपने थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए बुखार को भी नपवाया ऑफिस में, और ये सावधानी रखी कि हम दरवाजों के हैंडल को कम से कम छुएं, और छुएं तो दस्ताने पहनकर छुएं, ये तो हमारी निजी आदतों में अब शामिल हो गया है। और अच्छा। दूसरी जहां तक बात है कि जब हम प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं तो प्रोग्राम की डिमांड क्या है, किस तरह का, किस सब्जेक्ट पे प्रोग्राम है। हमने कोविड पे बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, कोविड-19 पर आकाशवाणी जयपुर ने, हम होंगे कामयाब और विविध भारती जयपुर ने संकल्प के नाम से प्रोग्राम चलाए हैं, और लगभग भारत के जितने भी रेडियो स्टेशन हैं उन्होंने सबने अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसमें दो तरह से काम हुआ है कि एक तो हम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो कोविड-19 में काम कर रहे थे, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हैं सरकार के माध्यम से आम जनता के लिए, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई उन संबंधित अधिकारियों से बात करके। दूसरे जो कोविड-19 में वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मचारी थे और हेल्थ वर्कर्स थे, जो जितने भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे इस संकट के काल में अपनी जान हथेली पे रख के, इस डर से कि कहीं हम भी संक्रमित न हो जाएं, बावजूद इसके भी उन्होंने देशभक्ति और अपने दायित्वों का परिचय देते हुए अपनी ड्यूटी को निभाया, उनसे बातचीत की, उनके अनुभव क्या रहे, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से खुद को सेफ रखे हुए हैं कोरोना से, उनके अनुभव भी हमने आम जनता तक पहुंचाए, तो आम लोगों को, आम लिसनर को ये पता चला कि कितने लोग हैं जो इस समय अपनी ड्यूटी को बिना किसी चिंता और परवाह के कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति जो उनके दायित्व हैं उनसे दूर रहकर भी, क्योंकि अब उनकी फर्स्ट ड्यूटी है नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए। तो इतने सारे जब अनुभव हमने लोगों को सुनाए तो काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और लोग ये जानने और समझने में सफल रहे कि भाई वास्तव में ये एक बड़ी बीमारी है और इस सब का मुकाबला हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि ये एक संकट है, ऐसा संकट, सामूहिक संकट जिसमें एक बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं और हम कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। इस बात का परिचय हमारे तमाम देशवासियों ने, हमारे नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हमें बताया है।
तो गोपाल जी आपने बिल्कुल सही कहा, हम संकल्प कार्यक्रम आपका लगातार सुनते रहे हैं, जयपुर से जो कार्यक्रम आता
जी,
है
जी.
और उसमें आपने अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों से हमें मिलवाया और वास्तव में उसने बहुत अच्छी तरह से जो जागरूकता को स्प्रेड करना था वो काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है. लेकिन उस संकल्प कार्यक्रम में आप इंटरव्यू साक्षात्कार लिया करते थे और आज मुझे आपका साक्षात्कार लेते हुए बहुत खुशी हो रही.
अच्छा,
आपका इंटरव्यू लेते हुए तो भूमिका का परिवर्तन यहाँ पर भी हुआ है कि जो इंटरव्यू लेते हैं उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं. COVID-19 ने भी हमको बदल दिया है. आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है हमारे सामाजिक आर्थिक सभी तरह की हमारे सभी क्षेत्रों में. तो रेडियो की कार्यशैली पर भी इसका क्या प्रभाव आएगा? COVID-19 के बाद काफी परिवर्तन हम देख रहे हैं कि आपके जो इंटरव्यूज लेने के तरीके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी चेंज हो गए और आने वाले समय में आप क्या बदलाव देखते हैं रेडियो की जो आपकी ऑफिस की कार्यशैली या उसकी कार्यशैली?
मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम जो स्टूडियो बेस्ड रिकॉर्डिंग होती थी शायद उसमें कमी आने की चांस मुझे ऐसे लगता है कि कमी होगी और हम जो हमारे टॉकर्स थे वार्ताकार थे कलाकार थे उनको स्टूडियो बुलाने से थोड़ा परहेज करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा रूल है इसका हम पूरी तरह से पालन कर सकें और जब ज़रूरी होगा कि बुलाना है तो हम इसका कोविड से बचाव के जो उपाय बताए हुए हैं सैनिटाइज करना खुद को सामने वाले को सैनिटाइज करना अपने इक्विपमेंट्स को माइक को हमारे अनाउंसर्स कंसोल्स को एक पूरी तरह सैनिटाइज करके हम काम में लें और बहुत ज़्यादा जो जोर रहेगा अब रिकॉर्डिंग पे वो अन्य मुद्दों के साथ साथ कोरोना पर भी लगातार चलने वाला है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना अब ख़त्म हो गया है या आने वाले 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा और आई थिंक ये चलते रहने वाली चीज़ है तो कोरोना के साथ ही हमें जीना है. तो जैसे बाकी दुनिया बदलेगी वैसे धीरे धीरे रेडियो भी अपने आप में परिवर्तन करेगा और आने वाले समय में कुछ अच्छे बदलाव हम सबको देखने को मिल सकते हैं.
तो अभी हम ज्यादातर देख रहे हैं आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो टेलीफोनिकली होते हैं
जी
ज्यादातर, जबकि पहले टॉकर आते थे और रिकॉर्डिंग होती थी. तो क्या आपको लगता है कि जो इक्विपमेंट्स अभी उपलब्ध हैं आकाशवाणी में वो सफिशियंट हैं? क्योंकि कोविड साथ रहने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग जब तक टीके का आविष्कार नहीं हो जाता इन चीजों का पालन करना ही पड़ेगा. तो आपको नहीं लगता है कि जो उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी ज्यादा उनको स्मार्ट होना होगा? कुछ कमियां जो हम महसूस करते हैं कि जो दूसरे एंड पर टॉकर बैठा था उसकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है.
जी किरण जी, यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी के जितने भी इक्विपमेंट हैं हमारे जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का वो हमारे लिए एक पूरी एक अलग यूनिट देखती है इंजीनियरिंग सेल और मैं समझता हूँ कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों का इस्तेमाल आकाशवाणी करता है. तो सेटअप में तो ज्यादा चेंज नहीं होगा. हम टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकते हैं. टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड किस तरह का आ रहा है, क्या वो ऑफिस में बैठा है या नॉइजिंग तो नहीं है या बाहर कहीं शोर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसके जो लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी पर. अगर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ तो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग में ही हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. बाकी अभी भी जो हम कर रहे हैं वो भी शायद बाकी सबसे हम अच्छा क्वालिटी ठीक बल्कि बहुत अच्छी कहूँगा इसको कि एक अच्छी क्वालिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं ऑडियोबल और जिसको लोग आसानी से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं.
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य.
तो गोपाल जी, एक व्यक्ति के जीवन में घर होता है, वर्क प्लेस होता है और कहते हैं कि एक स्थान का प्रभाव दूसरे स्थान पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है. जब सब घरों में लॉकडाउन थे और आप काम पर जा रहे थे, ऐसे में फैमिली वाइफ बच्चों का चिंतित होना स्वाभाविक है. ऐसे में उनके प्रति भी जिम्मेदारी है और काम की भी जिम्मेदारी है. आपने कैसे सामंजस्य बिठाया और फैमिली का सपोर्ट कैसे?
ये सवाल मैंने बहुत सारे अपने जो विशेषज्ञ से जब हमने बात की तब उनसे भी पूछा था कि आप
किस तरह से
बनता भी है
परिस्थितियां बाहर कुछ अलग थी.
एक्चुअली अगर हम
किसी को आ रही थी या खांस भी रहा था कोई व्यक्ति तो हम चिंतित हो रहे थे कि अरे ये क्या कोविड तो नहीं है. ऐसे में घर से बाहर निकल जाना चिंतित होना स्वाभाविक है.
किरण जी, चूंकि हम सभी एक सोशल लाइफ में है और सामाजिक जीवन में जीते हुए पारिवारिक दायित्व भी है, और मैं समझता हूँ कि मुझे परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जिन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ड्यूटी पे मत जाओ या कोविड के कारण छुट्टियों के ऑप्शन है तो आप छुट्टियाँ ले लो, बल्कि उन्होंने कहा कि चांस है और चैलेंज है, हम जितना अधिक बाहर जाके इस समय अपनी ड्यूटी को कर सकते हैं, तो इससे बड़ा देशभक्ति का एक बढ़िया मौका नहीं
क्या
मिलेगा।
बात है जी।
लॉकडाउन में भी कहा गया था कि इस समय अगर आप देशभक्ति निभाना चाहते हैं तो लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हमको कोरोना की चेन तोड़नी थी। लेकिन कुछ इमरजेंसी सर्विसेज, सिर्फ रेडियो में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज थी, जैसे रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई, कुछ बसें चली, और आप देख रहे थे कि कुछ ऑफिस लगातार कुछ परसेंटेज स्टाफ के साथ काम कर ही रहे थे। तो रेडियो एक इमरजेंसी सर्विस आवश्यक सेवाओं में है, और हमको इसमें काम करते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब आप स्टूडियो में अकेले होते हैं लेकिन बाहर आपको लाखों लोग सुनते हैं और आपकी कही गई बात का बहुत गहरा असर लोगों पर पड़ता है। तो इस समय अगर आपको कोई ड्यूटी मिली, आपको एक मौका मिला, तो उस मौके को हमने भरपूर कैश किया और अपने देश के प्रति प्रेम को, अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारियों को बिल्कुल बिना डर के निभाया, और हमें इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है, हम बहुत प्रसन्न
जी,
हैं।
तो बहुत प्रेरणादायक सचमुच, सही बात आपने कही। हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका में इसी तरह डटे रहना पड़ेगा। ये समय है अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने का।
जी
गोपाल जी, एक उद्घोषक भी एक कलाकार होता है, मेरा ऐसा मानना है। और कलाकार संवेदनशील और भावुक होता है, तभी तो वो दूसरों के मन की बात को अभिव्यक्त कर पाता है। हमें कोई भी, अगर अनाउंसर को कोई भी टॉपिक दिया जाता है, वो उसकी तरफ से बोल सकता है, क्योंकि वो उसके रोल में जा सकता है, उसके दिल की बात को महसूस कर सकता है। और संवेदनशीलता हमें थोड़ा सा साहित्यिकता या रचनात्मकता की ओर ले जाती है। तो आपके प्रोग्राम में मैंने आपकी लिखी पंक्तियां भी सुनी है कई बार, और आपने अगर कोरोना काल में कुछ लिखा हो या अन्य किसी विषय में कुछ पंक्तियां लिखी हो तो
जी
आप
जी
जरूर हमारे लिए
मैंने
सुनाए।
जब अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा क्रिएटिव टाइम है, कि जब हमको
जी
खूब सारा समय है और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने मन का कर सकते
जी
हैं। वैसे तो हम कहते थे कि हमारे पास समय ही नहीं है, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ कोरोना पे लिखी थी जो मैं आपको सुनाऊंगा, अपने तमाम श्रोताओं के साथ
जी
शेयर करना चाहूंगा,
स्वागत।
आप भी सुने। कोरोना तू कोई आफत नहीं, हमारी गलती की सजा है। कोरोना तू कोई आफत नहीं, हमारी गलती की सजा है। बहुत भागे हम आपाधापी में, बहुत भागे हम आपाधापी में, घर से दूर सड़कों पर आवारगी करते हुए। अब घर में रुकने का मौका दिया है तूने। रिश्ते जो लॉकडाउन थे भौतिकता की अंधी दौड़ में, रिश्ते जो लॉकडाउन थे भौतिकता की अंधी दौड़ में, अब रिश्तों के गहरे अर्थ समझने का मौका दिया है तूने। समय नहीं है, समय नहीं है, यही रोना था सबका, अब खूब समय है खुद को समझने का। समय नहीं है, यही रोना था सबका, अब खूब समय है खुद को समझने का। क्वारंटाइन करते हुए लॉकडाउन को समझो। आप ध्यान देना किरण जी, बड़ी अच्छी ये लाइनें हैं, दो अंतिम लाइन है। क्वारंटाइन करते हुए लॉकडाउन को समझो, और जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए हम सब कहें गुड बाय कोरोना।
गुड बाय कोरोना, बिल्कुल। इस शब्दों में तो हम भी आपके साथ में हैं, और बहुत सुंदर पंक्ति आपने लिखी है, मानो सभी के मन की बात आपने कह दी है। COVID-19 का जो काल है वो सबके जीवन में एक यादगार काल है, और सबके अपने अपने अनुभव हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी इस दौरान किसी अनुभव से गुजरे हों जो दिल को छू गया हो, जो शायद कोरोना काल नहीं होता तो शायद वो अनुभव भी आपको नहीं होता। कोई रोचक अनुभव
जी
जो
जी
आप हमसे शेयर करना चाहती हैं
दरअसल
बताइए।
हम सब सोचते थे, जब हमारी आम जिंदगी थी और भागदौड़ भरी जिंदगी थी, हम अपने काम में, दफ्तर में, घर में, बच्चों में मशगूल थे, और पता नहीं हम कौन कौन सी सोशल पार्टियों में जाया करते थे, हमने कितनी ही शादियां अटेंड की, और जिनमें पता ही नहीं था कि कौन हमारा परिचित है और कौन अपरिचित है, तो ये पता ही नहीं चलता था। हमको ये लगता था कि काश हम एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और सड़कें खाली मिलें। तो इस कोरोना ने हमको खाली शहर दिखाए, सन्नाटे दिखाए,
जी
पसरे हुए सन्नाटे, बहुत दूर दूर तक, जहां आदमी का कोई नामो निशान नहीं, और जहां पर भाग दौड़ थी, रेलम पेल थी, और
जी
इस लॉकडाउन में हमने देखा कि शहर के शहर सूने हो गए। एक जो नज़ारा बड़ा दुखदाई और मर्मांतक सा था कि कितने लोग, मैं स्पेशली वो मजदूर जो पैदल ही अपने घरों की तरफ चल पड़े क्योंकि कोई साधन ही नहीं था, तो ये भी देखना था इस लॉकडाउन में, ये एक नया अनुभव था। सड़कें बनाने वाले, बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनाने वाले लोग, जो आम मजदूर था, वो उन सड़कों को बिना उसकी दूरी की परवाह किए पैदल नाप रहा था। ये उसकी हिम्मत थी, ये उसकी जिजेविषा मतलब जीने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मुझे अपने घर पहुंचना है और घर पहुंचकर मैं चैन की सांस लूंगा। तो ये जो घर पहुंचने की ललक थी और सड़कों को पैदल नापने का जो एक लंबा रेला था, ये बहुत मर्मांतक था। हालांकि इस दौरान प्रकृति भी बड़े शुद्ध हुई, आबोहवा साफ हुई और हम सब ने बहुत एक नए रूप में अपने शहर को देखा, अपने आसपास।
मैं पर्टिकल और अगर जयपुर के बारे में आपसे पूछूं, आपका तो आना जाना बाहर रहा ही लॉकडाउन के दौरान भी, कर्फ्यू वगैरह थे तो भी आप तो काम पर जाते ही होंगे, आपने पर्टिकुलर जयपुर में किस तरह के परिवर्तन देखे पर्यावरणीय?
देखिए, पर्यावरणीय जहां तक दृष्टि की बात है तो जयपुर बहुत साफ और बिल्कुल जिसकी हवा बिल्कुल साफ हो गई, वायु प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो गया। और जब आप बाहर निकलें तो आपको लगे कि यार ये नज़ारा हवा महल का इतना साफ और बिना पर्यटकों के देखने को मिल रहा है, तो बड़ा अद्भुत नज़ारा था। जहाँ शहर की प्रमुख चौपड़ जो हमारा वॉल्ड सिटी है, पुराना शहर, और बहुत जीवंतता के साथ लोग रहते हैं, उन सबको खाली देखना एक बिल्कुल रोमांचित करने वाला था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक चलता फिरता शहर अचानक से सन्नाटे में आ जाए, ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
नहीं, बिल्कुल कल्पना भी नहीं की थी।
हाँ, लेकिन ऐसा हो गया और हम साक्षी हैं इस बात के कि हमको ये देखने का मौका मिला।
जी बिल्कुल, समय ने हमको समझाया कि जो इंसानी जो तौर तरीके हैं वो किस तरह से एक अदृश्य दुश्मन के अदृश्य संक्रमण से हम सभी डर कर सिमट कर बैठ गए
जी।
और ढेर सारी दौलत, ढेर सारी नॉलेज कुछ भी वहां पर काम नहीं आ रही, यानी कि प्रकृति सबसे उच्च है, वही सबसे ऊपर है और सदैव रहेगी।
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य।
गोपाल जी, उद्घोषकों और स्पेसिफिकली फिल्मी सॉन्ग का, फिल्मी
जी जी
म्यूजिक का तो चोली दामन का साथ होता
बड़ा
है।
गहरा रिश्ता है।
हाँ जी,
जी
कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो, अक्सर आप गुनगुनाते हो, तो आप हमें बताइए और साथ में गुनगुनाइए भी।
देखिए, मैं गुनगुनाने की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं कालजयी, हालांकि हिंदी फिल्म संगीत इतना समृद्ध है कि हम एक गाना उठाएं तो लगता है अरे अरे हमें वो गाना भी सुनना चाहिए, वो गाना उठाएं तो हमें अरे यार वो गाना भी सुनना चाहिए। मतलब इसकी कोई फाइनल लिस्ट बन ही नहीं सकती कि आपकी पसंद के कौन से गीत सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और वो एक प्रश्न की तरह हमेशा आपके सामने आता है, महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना है, लीना चंद्रावरकर पर फिल्माया हुआ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। आप इस गाने को जितनी बार भी सुनेंगे तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल नया लगेगा, और इसका जवाब आज तक भी शायद किसी को नहीं मिला होगा। अगर आप ये सुने और अपने तमाम सुनने वालों को सुनवा पाए तो बड़ा अच्छा रहेगा।
अपेक्षा करते हैं कि COVID-19 से हम सबक लेंगे और हमारे को प्रकृति ने जो ये गहरी गहरी झीलें दी हैं, झरने दिए हैं, पर्वत दिए हैं, जंगल दिए हैं, उसकी सुरक्षा हम करें ताकि हम लंबे समय तक पृथ्वी पर रह सकें। आज एक उद्घोषक की नजर से हमको देखना था। कई बार क्या होता है कि जो काम करते रहते हैं वो आप लगातार एक ऐसे मीडिया से जुड़े हुए हैं जो प्रचार प्रसार में जुटे रहते हैं, उनकी आवाज जाती रहती है, लेकिन हम कभी उनके मन की बात नहीं जान पाए कि उद्घोषक को क्या इस दौरान महसूस होता। तो आशा की किरण की ये एक कोशिश थी कि हम उनके मन को भी टटोलें, और हमने निश्चित तौर पर आपने हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं, और एक प्रोग्राम प्रेजेंटर को अच्छी तरह से समझने में हमें पूरी हमें सहायता मिली है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हमारी श्रोताओं के लिए हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद।
मैं भी बहुत आभारी हूँ आशा की किरण के इस चैनल और ऐप का, और आपका किरण जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ कि हम COVID-19 से लड़ते हुए एक नए भविष्य को बना पाएंगे। आपने हमें बुलाया और बातचीत की, हम बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा की किरण लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य, ये पॉडकास्ट जहाँ पर होगी ढेर सारी बातें जो हमेशा महकती रहेंगी खुशियों से, आशाओं से, उम्मीदों से, आकांक्षाओं से और उत्साह से, यानी कि यह है आपके जीवन में एक नया सूर्योदय। तो फिर हमेशा मिलते रहिए आशा की किरण में हमसे।